सन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादि देव 1008 भगवान महावीर के समो शरण की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, बेला में क्षमावाणी पर्व के उपलक्ष में देवशास्त्र गुरु का पूजन करके क्षमावाणी दिवस को मनाया। सभी लोगों ने अपने अपने नम्र भावों को विनम्र भावों को व्यक्त किया। दस दिन के बाद अपने में जो उत्पन्न हुए भाव थे उपसंहार के रूप में लास्ट दिन हम व्यक्त करते हैं। पहले दिन ही यदि व्यक्त कर लेते तो इतना अच्छी तरह से व्यक्त नहीं हो सकते थे भाव, इसलिए पहले दिन ही क्षमावाणी मान करके दस लक्षण मनाओ ऐसा नहीं कहा। दस लक्षण मनाने के बाद क्षमावाणी पर्व को भी मनाओ ताकि आप दस दिन में जो पेपर लिखे हैं मेहनत करके उसमें कितने सक्सेस हैं, आप आपके भावों में क्या क्या परिवर्तन आया है, वह व्यक्त करने पर समझ में आता है कि जैन धर्म में जैन परंपरा के अनुसार मनाए जाने वाला यह दशलक्षण पर्व कितना आध्यात्मिक होता है, कितना उसका महत्व है। आत्मा का संशोधन किए बिना किसी भी संसारी प्राणी का कल्याण नहीं होता। और आत्म संशोधन के ये 10 दिन हमारे लिए नदी की बाढ़ की तरह आकर के हमारे आत्मरूपी पंचगंगा में, आत्मरूपी पंचगंगा में साल भर के लिए जो इकट्ठा हुआ प्रदूषण है, सांगली का, कोल्हापुर का, इंचलकरजी का, सभी प्रदूषण जो इकट्ठा हो जाता है साल भर तक, हम उन्हीं दिनों में 10 लक्षण मनाते हैं जिन दिनों में बाहर भी बाढ़ आती है। बाहर भी बाढ़ आती है और उस बाढ़ को देख करके हम उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करके अपने में भी बाढ़ लाने का प्रयत्न हम करते हैं। और यह बाढ़ एक साल में एक बार नहीं आती है तो आत्मा में प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। 10 दिन अगर 10 लक्षण न मनाए कोई श्रावक तो उसकी आत्मा पंचगंगा की जगह गटर गंगा बन जाती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप पंचगंगा में जाकर के इंचलकर जी के पास जो पंचगंगा है, कोल्हापुर के पास भी जो पंचगंगा है, वहां जाकर के नदी का जरा परिशीलन करो, नदी के पानी का संशोधन करो, किस प्रकार का मिलता है। चाय के कलर का मिलता है या डांबर का कलर का मिलता है या बिल्कुल आकाश कलर का परिशुद्ध मिलता है, स्वच्छ सफेद सफेद पता चल जाएगा। साल भर पानी नहीं गिरा, उसका परिणाम है कि पंचगंगा एक साल के भीतर भीतर गटर गंगा जैसी लगने लगती है। और जून, जुलाई, अगस्त माह में एक दो बार बाढ़ आती है और एक दो बार क्या 3 बार बाढ़ आने लगी आजकल तो। नदी साफ होती है और फिर 2 महीने 3 महीने तक वही सफाई होती है नदी में, फिर धीरे 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 काली पड़ जाती है। नदी भी काली पड़ जाती है, उसका कारण कौन है? और कोई दूसरा नहीं, उसका कारण भी हम ही तो हैं। कोल्हापुर किसकी? हमारी। सांगली किसकी? हमारी। इंचलकरंजी किसकी? हमारी। फैक्ट्रियां किसकी? हमारी। खेत किसके? हमारे। उसमें जो फर्टिलाइजर फेंका जाता है, डाला जाता है, वो किसका? हमारा। ये सारा प्रदूषण किसका? हमारा। देखो, गंगा तो साफ है अपने आप में, लेकिन हम बाहर से भी गटर फैलाते हैं और अंदर से भी गटर फैलाते हैं। ये मनुष्य ने ही प्रदूषण उत्पन्न किया है सृष्टि में। इस सृष्टि में मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रदूषण बाहर का और अंदर का, इन दोनों का प्रदूषण दूर करना ये हमारा ही कर्तव्य है। नदी गंदी हो जाती है तो हम साफ नहीं कर सकते, उसको उसकी सफाई के लिए बादल चाहिए पड़ते, पानी बरसना पड़ता, बाढ़ चाहिए पड़ती। बाढ़ के माध्यम से नदी की सफाई होती है, लेकिन नदी में प्रदूषण कौन करता है? ऊपर वाला क्या, यहाँ नीचे वाला? नीचे वाले ही प्रदूषण पैदा करते हैं। जो प्रदूषण पैदा करते हैं वही प्रदूषण दूर करे, ये संभव नहीं है। और प्रदूषण दूर करने लायक प्रदूषण होता तो दूर भी करते। जो इकट्ठा हो जाता है सिटियों में, उस सब को हम बाहर फेंक देते, गांव के बाहर कर देते, गटरों के माध्यम से। गटर नहीं भी हो तो गटर बनाया जाता है सिटियों में। हमारा नहाया हुआ, धोया हुआ, थूका हुआ शौचालय, कितने कितने प्रकार से प्रदूषण है सिटियों में। इतने सारे आजकल दवाखाने बढ़ गए हैं, दवा खाने वाले भी अधिक हो गए हैं और दवा खाने भी अधिक हो गए। दवा खाने क्यों जाते हैं लोग? इसलिए जाते हैं, घर में सब दवा दवा करके खाते हैं। घर में सब दवा दवा करके खाते, मना करने पर भी सबको दवा करके ले करके खाते हैं। सबको दबाते, चुपचाप रहो, दबा दिया ना, सबको दबा दबा करके कुछ भी खाते रहते हैं, मना करने पर भी खाते रहते हैं। हमारे खाने में प्रदूषण है, खाने में कोई शैली नहीं, पद्धति नहीं, ढंग नहीं, तरीका नहीं। तो फिर अपने जीवन में, अपने पेट में प्रदूषण बढ़ेगा क्या? नहीं। शरीर प्रदूषित होता है, शरीर प्रदूषित हो गया तो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया तो अब सबको दवा के खाया है, अब दवा खाने जाकर के दवा को खाने के लिए जाना है, ये प्रसंग आ गया। हमारा जीवन इतना प्रदूषित है, यह प्रदूषण सृष्टि पर असर कर रहा है। प्रकृति पर मनुष्य का इतना बड़ा असर है, प्रकृति में जो कुछ भी आज प्रदूषण दिख रहा है वो किसकी देन है? प्रकृति की ही है या मनुष्य की है? मनुष्य की। मनुष्य भौतिक सुख को अधिक चाहता है, कष्ट नहीं चाहता। भौतिक सुख की वांछा में सुख के साधनों को जितना अपनाता जा रहा है, और विज्ञान के तरीके से जितने मशीनरी, जितने सुविधाजनक पदार्थ निर्मित होते जा रहे हैं, उतना ही प्रदूषण सब जगह व्याप्त हो रहा है। एक समय था लोग पंचगंगा का पानी पीते थे। गंगा नदी के पानी को भी पीते थे। गंगा नदी कहाँ है? वो सदलगा के पास है, वो नहीं, वो दूध गंगा। देखो, उसका नाम दूध गंगा और उसका नाम केवल गंगा। दूध गंगा में दूध की तरह पानी होना चाहिए था, वहां दूध की तरह पानी नहीं। बनारस की गंगा में बहुत तीर्थ होना चाहिए था, गंगा तीर्थ, गंगा तीर्थ, गंगा तीर्थ कह करके लोग दौड़ते हैं और तीर्थ के रूप में अपने छोटे से कलश में उस पानी को पैक करके लाते हैं और एक एक बूंद पीते हैं, सेवन करते हैं घर में ला करके। है हिंदू पद्धति में ये भी है, लाते हैं तीर्थ समझ करके उसको लाते हैं। लेकिन क्या वह गंगा आज तीर्थ है? विष है। और ये विष क्यों बन गया? हमने ही बनाया। क्या क्या मिलाया उसमें हम गिन नहीं सकते, क्या क्या मिलाया, वस्तुओं का नाम गिन नहीं सकते। इतने सारे पदार्थ उसमें हमने मिक्स कर दिया, प्रदूषित हो गया वो आज। वह पानी अमृत की जगह, तीर्थ की जगह, अमृत की जगह वह जहर हो गया। नदियों में आज पीने लायक पानी है ही नहीं। उसके कारण, मुख्य कारण तो फैक्ट्रियां, जहां से केमिकल छोड़ा जाता है, और जनसंख्या जैसी जैसी बढ़ती चली गई और सुख सुविधाएं भी घर में जास्ती अधिक बढ़ती चले गए, अनाप शनाप पानी का उपयोग होने लगा। जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या जितनी बढ़ेगी प्रदूषण भी उतना ही बढ़ेगा। ये मनुष्य का प्रदूषण नदी में पहुंच गया, फैक्ट्रियों का प्रदूषण नदी में पहुंच गया, खेतों में जो आप खाद देते हैं वह भी नदी में पहुंच गया, शौचालय हैं इनको धोते हैं आप, नदी में पहुंच गया। पहले लोग जंगल जाते थे, आज घर घर में शौचालय और उनको धोना पड़ता है। महाराज धोना नहीं पड़ता, वो अपने आप पानी डालने पर धुल जाते हैं। उधर से वो एक तरफ से निकलता रहता है और एक तरफ से भरता रहता है, आश्रय और बंद दोनों एक साथ ही रहते हैं। कितने अस्पताल हो गए मिरज में, कितने अस्पताल हैं, बहुत ज्यादा अस्पताल हैं, उनको धोया जाता है कि नहीं, औषधियों को फेंका जाता है, नाले में पहुंचाया जाता है, गटर में पहुंचाया जाता है, नदी में पहुंचाया जाता है, नदी से फिर नदी नदी मिलकर के कृष्णा नदी में पहुंच जाता है। कृष्णा तो कृष्णा है आज, पानी की मात्रा उसमें अधिक होती हुई भी प्रदूषण इतना अधिक है कि बड़े बड़े सिटियों का जो प्रदूषण है वो कृष्णा में, उसका पानी आज पीने लायक नहीं रहा, जहर हो गया। नलकूप का पानी क्या बोलते हैं, कूप, बोरिंग, वो पानी फिर भी साफ है, प्रदूषण नहीं है, नीचे से आ रहा है। कुएं का पानी फिर भी साफ है, बहुत दिन नहीं निकालने से थोड़ा बहुत उसमें खारापन आ सकता, जीवोत्पत्ति हो सकती है, इनसे कहीं ज्यादा प्रदूषण वो सभी सिटियों का, खेतों का और शौचालयों का पहुंच करके वह आज जहरीला बन गया है। मनुष्य ने प्रकृति को भी जहरीला बना दिया और अपनी आत्मा को भी जहरीला बना दिया। ज्ञान की गंगा भी भीतर से बहती थी, उस ज्ञान को प्रदूषित कर दिया। विज्ञान जब विज्ञान का रूप धारण करता है तो सुख सुविधाओं को खोजने लगता, अपना ज्ञान विज्ञान बन गया, केवल ज्ञान नहीं बना, सम्यक ज्ञान नहीं बना, विज्ञान बन गया, विज्ञान विपरीत ज्ञान विज्ञान, विपरीतम ज्ञानम विज्ञानम, जो ज्ञान विपरीत होता है उसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान भौतिक सुख सुविधा की खोज करता है और सम्यक ज्ञान भौतिकता में नहीं, भौतिकता के समस्त प्रदूषण से बच करके, बचा करके अपने आत्मा के भीतर जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को भी दूर करने का प्रयत्न करता है। इसलिए विज्ञान श्रेष्ठ नहीं, सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ है, केवल ज्ञान श्रेष्ठ है। इस धरती पर जब तक केवल ज्ञानी रहे तब तक यह धरती बहुत पवित्र और बहुत पावन रही। महावीर भगवान के समय तक नदियां, नदियों का पानी अमृत था, जब से विज्ञान प्रारंभ हो गया तब से नदी सब जहरीले बन गए। जब से मशीनरी आ गई जहरीले बन गए। व्यक्ति प्रमादी बन गया, अपने सारे काम को कार्य को मशीन पर थोप दिया और हाथ पांव हिलाए बिना सुख की अनुभूति करने लगा। देखो आज आपको कुछ भी परिश्रम नहीं है, घर में आज कुएं नहीं, पहले घर घर में कुएं होते थे, व्यक्ति अपने हाथ से घड़े को रस्सी बांधकर नीचे छोड़कर खींचता था, खींचने में व्यायाम होता था। व्यक्ति व्यायाम नहीं करेगा तो शरीर क्षीण होगा, कमजोर होगा, बीमार होगा, जो कुछ खाएगा वह भी ठीक से पचेगा नहीं। खा करके यदि 10 घड़े पानी को आप अपने हाथ से कुएं से खींचेंगे, खाया हुआ पच जाता है, रस बन जाता है, शरीर में ताकत बन जाती है। आज बैठे बैठे हम ताकत चाहते हैं, खींचना भी न पड़े। और पानी कहाँ आना चाहिए? पानी सीधा टंकी में आना चाहिए। आजकल तो हमने विहार करके कुछ मंदिरों में भी ऐसा देखा। क्या देखा महाराज? हमने ऐसा देखा कि भगवान का अभिषेक भी करना न पड़े और सीधा ही जब पानी आएगा चाबी तो शुरू ही रखना, जब आएगा हाथ जोड़ करके देखते रहना। ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन गर्भालय तक, गर्भगुड़ी तक चाबी और नल फिटिंग हो गया। नल का पानी लेकर उसमें लेकर अब छानते नहीं छानते ये भी पता नहीं, लेकिन नल तो गर्भालय तक आया है, उसका पानी उसमें लेकर के भगवान का सीधा अभिषेक होता है, न गर्म करना न छानना, कुछ भी प्रक्रिया नहीं। अब इतना ही रह गया है, अब कम से कम घड़े में लेकर के तो कर रहे हैं। अब दिमाग में ये बात अभी नहीं आई, इसको भी मेहनत क्यों करना, चावी ही उधर लगा दी जाए भगवान के मस्तक पर, और चालू रखा जाए, आ करके बैठना इतना ही, अब चालू होती है अभिषेक, मंत्र बोलते रहो अभिषेक होता जाएगा। ऐसा करते हैं ना, हाँ वही कॉपी यहाँ भी आ रही, कॉपी मार रहे हैं, सुबह कॉपी पीते हैं और उधर कॉपी मारकर ऐसा अभिषेक देखते। ये प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, ये प्रमाद बहुत बढ़ रहा है, हम कुछ भी मेहनत करना नहीं चाहते, बैठे बैठे सब काम हो जाए। टंकी में पानी आया, रसोई घर में भी एक पाइप, शौचालय में भी पाइप जा रहा है, कहीं भी कुछ ले जाना नहीं आना नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं करना। इसलिए लोग आज कमजोर हो गए, कमजोर होने से खाना खाया हुआ पचा नहीं है तो शक्ति नहीं बनी, शक्ति नहीं बनी तो रोग प्रतिकारक जो शक्ति होती है शरीर में वो नहीं रहा, और कमजोर हो गए, बीमार बन गए। बीमार बनने से अस्पताल पहुंच गए, दवा खाने पहुंच गए। हाँ, वो क्यों हुआ ये सब? यहाँ दवा दवा करके खाया। महावीर भगवान की वाणी ने, जिनवाणी ने जो कुछ कहा था उसको हमने क्या किया? दबाया। कुछ मत बोलो, हम जरा सुख से रहना चाहते। जिनवाणी से कहा, जिनवाणी माता तुम कुछ मत बोलो, तुमको हम दबा करके थोड़ा जिनवाणी को दबाने से ही हम रोगी बन गए। जिनवाणी की बात को हमने नहीं माना, नहीं समझा। और श्रावक जीवन में रहा क्या है? कुछ भी नहीं रहा। न उसके 8 मूल गुण रह गए, न प्रतिमा है, न धर्म है, न परिश्रम है, न स्वाध्याय है, न जिनवाणी की चिंता, कुछ भी नहीं। सब मैदान साफ है जैन धर्म का। इसको कहते हैं भौतिकता, इसको कहते हैं विज्ञान। ये सम्यक ज्ञान नहीं, ये विज्ञान है। सम्यक ज्ञान हमें प्रदूषण से बचाता है, और विज्ञान हमें अपनी आत्मा को, अपने जीवन को और बाहरी व्यवहार को प्रदूषित करता है। इसलिए विज्ञान ठीक है, विज्ञान आया है, लेकिन विज्ञान को समझ करके हमें जीना है। रास्ता निकालना है कि सम्यक ज्ञान की रक्षा कैसे हो। सम्यक ज्ञान जीवन में आएगा तो सम्यक आचरण भी आएगा, और सम्यक आचरण आएगा तो निश्चित रूप से हम विज्ञान से बचकर सम्यक ज्ञान को अपना जीवन बनाकर अपने प्रदूषण को दूर करते चले जाएंगे। मनुष्य ने जन्म के पश्चात जितने अपराध किए हैं, उन अपराधों को धोना यह क्षमा धर्म है। अपने जिंदगी में हमने कितने कितने अपराध किए हैं, कितने कितने प्रमाद किए हैं, विज्ञान का साथ होकर के हमारा जीवन कहां कहां प्रदूषित बन चुका है, उसका संशोधन करके आत्मा की ओर लौटने का नाम है उत्तम क्षमा। दूसरे से क्षमा मांगने पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें अपनी आत्मा को क्षमा करना है। आत्मा की क्षमा क्या है? कषाय, प्रमाद, अनाचार, अकर्तव्य, इन सब से दूर होने का नाम है क्षमा। ये उत्तम क्षमा है। जिसके पास बिल्कुल ही क्षमा नहीं है, जरा भी क्षमा धर्म उत्पन्न नहीं है, वह जीवन किस काम का? तीर्थंकरों ने बताया है क्रोध 4 प्रकार का आत्मा में होता है। प्रत्येक जीवात्मा, आप में भी, एक इंद्रिय जीव में भी, द्विइंद्रिय जीव में भी, सभी जीवों में जो कषाय है वो 25 प्रकार की हैं। 25 कषाय का मालिक है प्रत्येक आत्मा, और ये कषाय कहाँ है? आत्मा में। ये कषाय कहाँ से आई? आत्मा से आई क्या? नहीं, ये आत्मा के नहीं, आत्मा नहीं, कषाय आत्मा नहीं, आत्मा के नहीं, ये बाहर से तो आए हैं। कषाय एक कर्म रूप, एक पौद्गलिक शक्ति है, कर्म है, ये बाहर से हमने ग्रहण किए हैं 25 प्रकार के। ये 25 प्रकार के 25 के 25 कषाय सभी उदय में रह करके जिस आत्मा को फल देते रहते हैं, उस आत्मा के भीतर आंशिक क्षमा भी नहीं होती। तो क्या सतत क्रोध करता रहता है? सतत क्रोध नहीं करता, सतत उस क्रोध कषाय की अनुभूति में विद्यमान रहता है, प्रत्येक समय उसकी अनुभूति वह करता है, 25 की अनुभूति सतत करता है। किस गुणस्थान में? कहते पहले गुणस्थान में, प्रथम गुणस्थान में 25 कषायों की अनुभूति होती है, दूसरे में भी 25 की ही अनुभूति होती है, तीसरे में एक कम हो जाती है, चार कम हो जाते, मतलब 25 कषाय का मतलब क्रोध मान माया लोक के हिसाब से 25 बनते हैं, नौ नौ कषाय मिलकर के। तीसरे गुणस्थान में यदि आप चढ़ जाते हैं, उस स्टेज पर आ जाते हैं, तो आपके पास चार कम हो जाते हैं 25 में से, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोक, ये चार कम हो जाते हैं। कितने रह गए आप? हाँ, तीसरे गुणस्थान में आने के बाद आपके पास केवल 21 ही रह गए, कम तो हो गए। ये कुछ क्षमावान है, इसने कम से कम एक क्वालिटी की कषाय को हटा दिया। सबसे खतरनाक क्वालिटी अनंतानुबंधी जो थी उसको हटा दिया और तीसरे में आ गए, और तीसरे में आने वाला व्यक्ति ज्यादा समय नहीं रहता, ये भगवान का कहना है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान का नाम ही है मिश्र गुणस्थान, और मिश्र गुणस्थान में मिश्र परिणाम होते हैं, मिश्र परिणाम में दोनों तरफ रहता है, इधर भी यानी किधर, हाँ गंगा नदी निकली है हिमालय से, पावन तीर्थ वह जल बह करके बनारस तक वही पानी आया, लेकिन बनारस की सिटी में प्रवेश कर गया, कौन सा स्वरूप बन गया जल का? मिश्र, मिश्र। अब यह मिश्र वस्तुतः तीर्थ है क्या? नहीं है। अमृत है क्या? नहीं है। अमृतपन को वह उसने खो दिया, अब उसको पियोगे तो जैसा उसका स्वाद है, जैसा उसका प्रभाव है, जैसा उसका गुणधर्म है, जैसा उसका लक्षण है, वैसा ही पेट में जाकर के काम करेगा। पेट में वो पानी गया है तो मिश्र काम करेगा। क्या मिश्र? गंगा का जल तो है, तुमने पिया है, चिंता मत करो, लेकिन कुछ और भी उसमें है, उसका भी असर तुम्हारे शरीर पर आएगा। ऐसा कह करके एक तरफ तो गंगा तीर्थ और एक तरफ से प्रदूषण पेट के भीतर जब होता है, आदमी स्वस्थ नहीं रह पाता। मिश्र पानी को पीने वाला जैसा स्वस्थ नहीं रह सकता, उसी प्रकार मिश्र गुणस्थान में रहने वाला जीव भी धर्म के क्षेत्र में दोनों तरफ रहता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे मिथ्यात्व भी चाहिए और सम्यक्त्व भी चाहिए। गणपति भी चाहिए, वो तो साल में एक बार आता है, उसको क्यों छोड़े? वो भी अच्छा लगता है और अरहंत भगवान भी अच्छे लगते हैं। और अरहंत भगवान कहते हैं, क्या करते हो तुमको, अच्छा कौन सा लगना चाहिए, कौन सा नहीं लगना चाहिए, इतना भी विवेक नहीं है क्या? वो बुद्धि सिखाते हैं अरहंत भगवान, ज्ञान देते हैं। उनका उपदेश जब हमारे कानों में पड़ जाता है तब पता चलता है असली गणपति कौन है। अरहंत भगवान ने कहा, मैं तो भगवान हूं, अरहंत अवस्था में हूं, लेकिन मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, किसी को शिक्षा नहीं देता, किसी को कुछ नहीं करता, बस मेरा काम ओम हो गया, मेरा इतना ही मेरा काम हो गया, इसलिए अरहंत हूं। इतना काम जो करता है वो अरहंत, और इसके पश्चात का जिनका काम होता है वो है गणपति, असली गणपति। वो कौन? गणधर, गौतम गणधर। अरहंत के वाणी के पश्चात उस वाणी को ग्रहण करके गणधर चिंतन मनन करके चतुर अनुयोगों की संरचना करके उसका उपदेश, उसकी शिक्षा, उसका संस्कार देने वाले कौन है? गणधर। गणधर का मतलब गण को धारण करने वाले, यानी गणेश, गण का ईश यानी स्वामी, पति, अधिपति, गणेश, गणधर असली गणपति है। अब ये पता चल गया व्यक्ति को कि असली गणपति तो ये हैं। मैं समझता था अरहंत भी देव हैं, गणपति भी देव हैं, सभी देव समान हैं, ऐसा समझता था। पर जब मैं ऐसा समझता था, किस गुणस्थान में था उसको पता ही चल जाता है। किस गुणस्थान में था? हाँ, बनारस के गंगा तट पर खड़ा था और हिमालय का ही पानी पीता था, लेकिन गंगा बनारस के प्रदूषण मिश्रित पानी को मैं पीता था। अब पता चल गया असली देव कौन है, असली गणधर कौन है, ये मुझे अब पता चल गया। ये प्रदूषण मेरे पास था, मुझे विवेक नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं पागल की भांति कुछ भी करता था। जैसा छोटा बच्चा नादान होता है, छोटा बच्चा है, ज्ञान नहीं रहता तो वह कुछ भी करता रहता है। माँ सामने बैठी रहती है, उसने लघुशंका कर दिया, शौच कर दिया और मुड़ के देखता है ये क्या गिर गया है, उसको हाथ में ले लेता है। तब माँ क्या कहती है? चुपचाप रहती, देखते हुए भी चुपचाप रहती। गणधर परमिष्टि आपको देख करके चुपचाप बैठ नहीं सकते, गणधर का मन रुकेगा नहीं। गणधर या तो अमृतमय बाण छोड़ेंगे या तो अग्नि बाण छोड़ेंगे, या तो अमृत बरसाएंगे या तो कड़वे प्रवचन बरसाएंगे। और जरूरी होता है, बच्चा है, कुछ भी करता रहता है, हमको अच्छा नहीं लगता। बच्चा अच्छा नहीं लगता क्योंकि कुछ भी करता रहता है। सोच लघुशंका किया और उसी में हाथ डाल रहा है, मैं देख रहा हूं, तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना, दया तो आती है। गणधर परमिष्टि हमारे लिए जितना उपकार करते हैं, भगवान उतना उपकार हमारे लिए नहीं करते। इसलिए कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। एक भक्त आया मंदिर में, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हुआ, एकदम से गुरु दिखे। उनके दिल में विचार आया, विचार कौंधा, विचार करने लगा कि मैं पहले गुरु को नमस्कार करूं कि भगवान को, विचार में पड़ गया। गुरु को नमस्कार करूं कि भगवान को, गुरु को करूं कि भगवान को, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। लास्ट में उन्होंने विचार किया, भगवान तो भगवान है, ठीक है गुरु से बड़े हैं, लेकिन उपकार तो मेरे लिए रात दिन गुरु का ही हुआ है। मैं जब हाथ डाल रहा था चाटा मार के समझाया, गंदगी में हाथ डालता है, गणपति का स्वरूप समझ। सबको गणपति समझता है, असली गणपति कौन होता है देख विचार कर स्वरूप का। एक चाटा मार के गुरु ने समझाया था, वो चाटा याद आया, देखो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहा था, जब याद आ गया, वो याद आते ही वह सोचने लगा ठीक ही तो है, भगवान कुछ नहीं करते, गणपति बहुत कुछ करते। कौन गणपति? हाँ गंधर गणपति, असली गणपति, ये बहुत कुछ करते हमारी जिंदगी के लिए। उपकार उपकार वो भी हमारे लिए अपकार करता है, उपकार भी हमारे लिए अपकार करता है। उस उपकार के बारे में भी ये अपकार है इसको भी समझाया, तब से हमने वो उपकार छोड़ दिया, उपकार छोड़ा। कौन सा उपकार अभी समझ में नहीं आया। उपकार खाता था, समझ में आ गया उपकार किसको बोल रहा हूं? मुझे सब मालूम है क्या क्या बाजार में है। उपकार खाता था, उपकार है क्या नहीं? उपकार बाजार में है, किरान दुकान में बेचते हो क्या नहीं? हाँ उपकार करते हो क्या नहीं दूसरे को? उपकार करते हैं क्या? अपकार, उपकार खाने वाले भी बर्बाद हो रहे हैं बाजार में, गुटखा खाने वाले बाजार में बर्बाद हो रहे हैं, जो उपकार फाइव स्टार गुटखा मटका चटका क्या क्या खा के आ जाते हैं और मुंह को खराब कर लेते हैं। जब सुबह उठ करके ब्रश करते हैं तो वो ब्रश जो है इधर से इधर पार हो जाता है, बाहर ही आ जाता, रात भर यहाँ दबा करके सो जाते हैं, और वह उपकार भी आपके ऊपर इतना बड़ा उपकार करता है, रात भर आपके लिए बहुत बड़ा उपकार करता है। क्या करता है? यहाँ से उठो और अस्पताल जाओ, यही उपकार कर रहा हूं, कहता है कि नहीं? उपकार भी, वह उसका नाम उपकार है, लेकिन उपकार भी आपको अपकार करता है। इस उपकार को मत खाओ, इस गुटके को मत खाओ, भगवान ने समझाया क्या? गणपति ने समझाया, गणपति ने समझाया ना। और असली गणपति ने समझाया क्या? नकली गणपति ने समझाया। तो फिर नकली गणपति के पास क्यों जाते हो? क्या देता है बताओ? क्या क्या दिया तुम्हारे लिए आज तक? कौन सा उपकार किया? अज्ञान है क्या नहीं? अज्ञान आत्मा का प्रदूषण है क्या नहीं? और अपनी आत्मा में स्वयं अपने हाथों से, अपने आचरण से, अपने विचारों से प्रदूषण पैदा कर लेना, यह क्या क्रोध नहीं है? क्रूरता नहीं है? जो हम ही अपने लिए अनिष्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं आत्मा के लिए, क्या ये आत्मा का प्रदूषण नहीं, आत्मा की क्रूरता नहीं? तो इस पर कौन क्षमा करने वाला? अपनी आत्मा को प्रदूषण से मुक्त करा के, उसको क्षमा करके, बाहर निकाल करके तीर्थ की तरह पवित्र रखने वाला कौन? हमको ही करना पड़ेगा कि दूसरा कोई आएगा? और आप उस संबंधी प्रदूषण के वजह से जो खुद में प्रदूषण बढ़ाया और खुद ने ही अनिष्ट किया, उसका क्षमा मांगने के लिए गणपति के पास आते हैं। गणपति महाराज, आप हमारे लिए क्षमा करो, हमने उपकार खाया, गुटखा खाया, क्या क्या खाया, सब कुछ खाया, आपका दिमाग भी खाया, हमने बहुत कुछ खाया, अब खाना छोड़ देता हूँ, अभी तक जो खाया है उसका क्षमा करो, क्षमा करो कह करके गणपति के पास जाने पर क्या असली गणपति आपको क्षमा करेंगे तो क्या क्षमा हो सकती? क्षमा का स्वरूप ये नहीं है। हमने अपनी आत्मा के लिए जिस क्रूरता के माध्यम से जो हमारे लिए हमने अनिष्ट किया है, उस अनिष्ट को हमारे लिए दूर करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को हमें ही क्षमा मांगना पड़ेगा। अब क्षमा कर देता हूँ हे आत्मा, तो अब भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं कर, एक बार क्षमा कर देता हूँ तुझे, बार बार क्षमा नहीं मांगना, मैं कर देता हूँ क्षमा, खुद ही खुद के आत्मा के लिए खुद ही क्षमा कर लेना, ये सबसे बड़ा काम है, जीवन का प्रथम काम है। और जिसने एक बार अपने खुद की आत्मा के लिए खुद ने क्षमा कर दिया, वह वीर हो जाता, उसी को वीर बोलते हैं जो अपने को क्षमा कर गया है, कर चुका है, अपने अपराधों को आत्मा से दूर कर चुका है, वह असली क्षमा है। दूसरे से क्षमा मांगना आसान है, किसी के साथ कुछ व्यवहार कटुता का व्यवहार हो गया हो, महाराज क्षमा कर देना हमारे लिए, ये कितना आसान है, आसान है। ये तो शरीर से हो सकता है, शरीर से झुको, नम्र हो जाओ और क्षमा मांगो, बहुत आसान है। लेकिन आत्मा को क्षमा कर देना ये आसान है क्या? ये आसान नहीं। हमने अपने ऊपर ही प्रदूषण फैलाया है, अपने ऊपर ही हम कुपित होकर के अपने को अपराधी बनाया है, और ऐसे खुद ने ही कितनी बार अपराध किया है, कौन कौन से पाप नहीं किए हैं। पंच पापों में अनादिकाल से यह आत्मा चली आ रही है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पंच पाप हैं। ये किसने किया है? अपन ने किया है क्या? नहीं, तो किसको क्षमा करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को ही क्षमा करके उनको त्यागना पड़ेगा कि नहीं? त्याग करके क्षमा मांगना पड़ेगा कि त्यागे बिना क्षमा मांगना पड़ेगा? हाँ, त्यागे बिना क्षमा कर दिया आत्मा को तो और खाएगा वो, और खाएगा। पहला नियम दिला दो, हाँ 28 मूल गुण दिला दो जो उसमें है, फार्म में है 28 मूल गुण, मुनि महाराज के भी 28 मूल गुण है और उस फार्म में भी 28 कर दिया हमने, 28 बना दिया उसको, इसलिए बनाया कम से कम जरा लगे कि हम भी 28 मूल गुण के धारी हैं। केवल महाराज ही नहीं होते, हम भी 28 मूल गुण के धारी। और इस चतुर्मास में तो ऐसा लग रहा है सभी ने अपनी आत्मा को, बहुत लोगों ने अपनी आत्मा को क्षमा की है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कर दिया कि अपनी रेशमी सीढ़ी को ला करके दे दिया, लेकिन कुछ लोगों ने आश्वासन दिया है केवल, हाँ आश्वासन ही केवल दिया है, देंगे वो अभी दिया नहीं, केवल हाथ उठा करके अनुमोदन और आश्वासन दिया है उन्होंने, अभी आए नहीं, हाँ अभी क्षमा नहीं हुआ है। हमने 6000 उन कीड़ों की बलि ली है अपने शरीर के वास्ते, शरीर को सजाने के लिए 6000 कीड़ों की बलि ली है। ये वस्त्र आपके लिए ही बनते हैं, जो क्रूरी होगा वो पहनेगा, जो निर्दयी होगा, दयाहीन होगा, वो पहनेगा, खरीदेगा, और इसकी कीमत जितना रखेंगे उतने में लेगा, लेगा वो उतने में लेगा। घर का धन बर्बाद और आत्मा का धर्म बर्बाद, अहिंसा धर्म बर्बाद ही बर्बाद, बर्बादी बाहर भी बर्बादी है और अंतरंग में भी बर्बादी है, दोनों से हम बर्बाद हो रहे हैं। महाराज हम आगे नहीं खरीदेंगे मत बोलो ना, मन तो यही कहता है, लेकिन इसके पश्चात भी आत्मा कहाँ अपराधी है उसका संशोधन नहीं कर रहे हैं अभी। कहाँ अपराधी है? अपराधी ये है कि वह उसी से मोह कर रहा है जो हमारे नरकायु का बंद का कारण है, त्रिंशायु के बंद का कारण है, जो 6000 कीड़ों को निर्दयता के साथ मारा हुआ वस्त्र पहन सकता है, वो 6000 बार कीड़ा बनना पड़ेगा उनको भी, 6000 बार चौरिंद्री बनना पड़ेगा, चौरिंद्री है वो, एक इंद्री भी नहीं, बनो बनो। और हम 6000 बार मान लो कीड़े बन रहे हैं, 6000 बार कीड़े बनने का मार्ग पकड़ लिया, तो हमने अपने ही ऊपर क्रोध किया क्या? दूसरे के ऊपर? अपने ही ऊपर क्रोध किया हमने, हमको हमने क्षमा नहीं की। जब तक अपराध छोड़ा नहीं जाता तब तक क्षमा होती ही नहीं है। वो जीव जो तड़पते तड़पते मर जाते हैं, वो ये कौन मार रहा है, कौन मार रहा है, ये भी तड़प तड़प के मरे, ये भी तड़प तड़प के मरे, ऐसे श्राप देंगे क्या? नहीं देंगे, वो भी आत्मा है, उनके भी प्राण है, उनको भी दुख है, उनको भी सुख है, जीवन में वो भी सुखी ही होना चाहते हैं। और वो तड़प तड़प के जब मरते हैं, उस समय का जो उसका श्राप रहता है वो आत्मा को लगता है, लगता है वो कहीं नहीं जाएगा, और उसको धोना चाहते हैं तो त्याग ही उसका उपाय है। जिस दिन आप उस वस्तु से मुक्त हो जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं, उस दिन से उसका प्रायश्चित हो जाता है, और इसके उपरांत भी आपको उपवास करने पड़ेंगे, क्योंकि अज्ञान अवस्था में हमने क्रूरता के साथ अपना ही अपकार किया है और दूसरे के ऊपर निर्दयता के साथ उनके प्राणों का हरण कर लिया अपने वस्त्रों को पहनने के लिए, तो कितनी बड़ी क्रूरता। और केवल अपनी एक छोटी सी शरीर को ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए इतना बड़ा पाप। अगर हम कीड़े होते तो कैसा लगता? रेशम का कीड़ा हम अगर होते तो अच्छा लगता? उस कीड़े से पूछो, हे रेशम का कीड़ा, मुझे अच्छे अच्छे उत्सवों के टाइम में शरीर को सजाने के लिए जरा तुम्हारा शरीर का रेशा तोड़कर साड़ी बनाकर पहनना चाहता हूं, और जरा दोगे क्या? तुम कबूल होते? कबूल होते? नहीं। यदि नहीं है, नहीं कबूल होते, तो यहाँ कबूल होंगे कि हम रेशम की साड़ी को नहीं पहनेंगे, क्योंकि हमारे समान ही उसकी आत्मा है और हमारी भी वही आत्मा है, उसको भी दुख है, मेरे को भी दुख है, मैं भी वही दुख की अनुभूति करता हूँ जो वो करता है। इस तथ्य को, इस विषय को समझ करके क्या अपने दिल में दया नहीं जगनी चाहिए? जगनी चाहिए। महाराज चाहिए लेकिन लेकिन मन तो कर रहा है कि छोड़ो छोड़ो, बस मोह में अटके हैं। मोह भी एक अपराध है। ये अपराध हमने किया तो क्षमा मांगने से, कोई बाहर से क्षमा मांगोगे भगवान से और महाराज से जिनवानी से, पूजन करके मेरा पाप निर्जित हो जाए, मेरा पाप निर्जित हो जाए, और साड़ी पहन करके ही पूजा कर रहे हैं और उसी पाप को धोने के लिए कर रहे हैं। ऐसे पाप को धोना कभी संभव है? कुछ लोगों से पूछा आप कितनी बार पहनते हैं इसको, तो उन्होंने कहा 2 बार। कब? महावीर जयंती के बाद मंदिर आते समय एक दिन, और महावीर भगवान का जयकार, अहिंसा परमो धर्म की जय, रेशम सीढ़ी में अहिंसा परमो धर्म की जय, ऐसा धर्म मना रहे हैं, महावीर को मना रहे हैं, रेशम का साड़ी पहने और भगवान महावीर का जय बोल रहे हैं, कितना अंधापन। ये धर्म करने की तरीका नहीं है। गौतम गंधर्व चुपचाप नहीं बैठते, क्या कर रहा है ये कहते हैं, ये क्या कर रहा है, छोड़, जिसको डाला है उसी में हाथ डाल रहा है। कुछ साड़ियां तो आ गई, क्या कर दिया, दिल में दया उपजी, इतना कहने पर हुआ ये, इतना भी नहीं कहता ना, कोई दिल में चिंतन भी नहीं, दिल साफ। महावीर ने कहा श्रावक धर्म में प्रथम सीढ़ी 8 मूल गुण, स्थूल हिंसा का त्यागी होता है श्रावक, उसका प्रथम स्टेज का धर्म माना जाता है। ये प्रथम स्टेज पर आपको प्रथम सीढ़ी पर पांव रखने के लिए कम से कम इनको तो छोड़ना ही चाहिए, संकल्प ही लेना चाहिए और तत्काल उसको घर से बाहर निकाल दो। कोई सवाल ले लेते हैं तो बेधड़क उसमें भाग ले लेते हैं, सवाल में 10,000-20,000 तक चढ़ जाता है, पर उस साड़ी की क्या कीमत है, रखेंगे तो प्रतिनित्य पाप बंद होगा, नहीं रखेंगे तो बिल्कुल पापाश्रव रुक जाएगा, आत्मा त्रेंच गति से बच जाएगी, नरक गति से बच जाएगी। बचेगी कि नहीं बचेगी, बचाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, चाहेंगे तो चाहेंगे, केवल चाहेंगे नहीं कहना, चाहेंगे नहीं कहना, उसको हटाना भी है, हटा करके गणपति के सामने रखो, महाराज हमने जो अपराध किया है वो उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ, ये है हमारे पाप की साड़ी जो हमारे नरकायु और त्रिरंच आयु के बंद के लिए कारण बन सकता था, इसी साड़ी ये मैं आजीवन पर्यंत त्याग देती हूँ, इसको छूना भी मेरे लिए पाप है, ऐसा कर करके त्यागेंगे तो हम समझेंगे श्रावक के 28 मूल गुण में से एक मूल गुण है, 28 मूल गुण, 28 है कि नहीं, फॉर्म में, फॉर्म में 28 है, उसमें से ये कितने नंबर का है मालूम नहीं, मालूम 13वां नंबर का होगा, 23 का है, 13 है क्या, 23 है, 13 है क्या, नहीं मुझे जहां तक मालूम है उसमें 3 ही तो मुख्य हैं, 13, 14, 15, ये 3 अगर कोई भर लेता है तो पूरा, वो पूरा फार्म ही सफल हो जाता है, ये मुख्य है, शेष को आप शक्ति के अनुसार त्याग दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मुख्य है। और बहुत से लोगों ने इस फार्म को भरा है। मुझे खुशी हुई है जिन्होंने इस रेशम की साड़ी छोड़ी है, त्याग दिया है। असली गणपति ही तुम्हें बचा सकेगा, नकली गणपति तो कुछ नहीं, मौन रहेगा वो। तुम करो जो कुछ करते करो, हाँ, मेरे प्रति भी जो कुछ करते करो कहेगा वो, मेरे प्रति भी जो कुछ करते करो, चार दिन पूजा करो, आरती करो, भजन करो, और पीते खाते काते पीते इधर उधर झूमते मुझे पानी में डुबो करके भी आ जाओ तो चल जाएगा मुझे। कितनी क्षमावान है वो, लेकिन ये गणपति क्षमा नहीं करेगा। जो असली गणपति है वो आपको क्षमा नहीं करेगा, नकली गणपति तो सब क्षमा कर देता है। तुम उनको डुबो दो, उठा दो, अगली बार मोर या कहो और लौकर या कहो, जोर या कहो, सब सहन कर लेता है। लेकिन अरहंत भगवान का गणपति कभी आपको ये काम करते हुए चुप नहीं बैठ सकता, बुद्धि देगा। गणपति क्या देता है? बुद्धि देता है ना, सद्बुद्धि। बताओ उस बुद्धि गणपति ने क्या सद्बुद्धि दिया है आपको? हर साल ला करके घर में रखते, और जो सद्बुद्धि देता है वो गणपति, गणपति समझ में नहीं आते। यही तो मिथ्या ज्ञान है, यही मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के कारण से आत्मा दुखी है। चार कषायें हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। चारों कषाय कषाय ही हैं। इन चारों को हमें छोड़ना है, ये आत्मा के प्रदूषण हैं। हमारे लिए क्षमा कर देना चाहिए सबसे पहले। दूसरे को क्षमा करने से पहले अपनी आत्मा को क्षमा कर दो। जिनको लेकर के विकल्प होता है, जिनको लेकर के गुस्सा आता है, जिनको लेकर के बदले के भाव आते हैं, जिनको लेकर के द्वेष के भाव आते हैं, वो आना हमारी आत्मा का प्रदूषण है क्या? वो कारण है उसमें। कौन कारण है? हमारी कमजोरी है ना। दूसरे को हम गलत समझते हैं, ये हमारी कमजोरी है कि उनकी कमजोरी है? तो हमारी कमजोरी को हम दूर करेंगे तो दूसरा हमारे लिए शत्रु भी मित्र जैसे लगने लगता है। हाँ, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, बार बार मन में विचार करो, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं ऐसा अपराध नहीं करूँगा, मैं ऐसी हिंसा नहीं करूँगा जो दूसरे के प्राण घात के लिए कारण हो, वो ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करूँगा। ये दया दिल 28 मूल गुण को पैदा करता है, और दिल में दया नहीं आई तो 28 मूल गुण पैदा अपने जीवन में नहीं हो सकते। और वह व्यक्ति को कुछ भी कहो फिर जबरदस्ती में फार्म भरेगा वो, जैसे भरना पड़ रहा हो, तो उसमें क्षमा भाव प्रकट नहीं होता। जो जीव मरते हैं वो तो मरते ही रहते हैं, उससे आत्मा संशोधित नहीं होती, पाप कर्म दूर नहीं होते, बंधे हुए कर्म दृढ़तर ऐसे ही बने रहते हैं, और कालांतर में वो अपने लिए फल तो अवश्य देते हैं। जो हमने रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? कैसेट भरा है वो तो गाएगा ही, जब लगाओगे तुमने ऐसा ही किया था, जैसा गाया था वैसे ही है। हम अपने तरफ से कुछ भी उसमें मिक्स नहीं किए। कैसेट तो ये नहीं कहता कि मेरे तरफ से कुछ उसमें कम वेशी किया हो, हमने जैसा गाया था वैसा ही हमारी आवाज हमको सुनाई देगी। पाप और पुण्य, पुण्य करोगे तो कैसेट में पुण्य भरेगा, पाप करोगे तो कैसेट में पाप भरेगा, जो करोगे वही रहेगा और वही सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। कैसे करना है? उत्तम क्षमा के दिन पूरी तरह से क्षमा करना है कि नहीं? हाँ, तो हर घर में है रेशम की साड़ी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करना है कह करके फिर तटस्थी हो जाता है जीव। मोह की महिमा इतनी गहरी होती है, इस मोह के कारण से ही शेष तीन कषायें होती हैं। जहां मोह है वहां पर क्रोध है ही, क्रूरता है ही। मोह के कारण से उस वस्तु को नहीं छोड़ रहा है तो ये क्या क्रूरता नहीं, ये बर्बरता नहीं, ये हिंसा नहीं? ये क्रूरता अपने ही ऊपर क्रूरता क्यों है मोह के कारण से? और जहां मोह है वहां क्रूरता है, और जहां क्रूरता है मोह है दोनों है, तो क्या मान नहीं? वहां मान भी है, क्योंकि वो मैं वस्तु का उसका मालिक, मैं कैसे छोड़ू, मुझे वो चाहिए, उसके बिना मैं नहीं रह सकता और मेरे बिना वो नहीं रह सकता। इतना फ्रेंडशिप हुआ है दोनों का, जड़ वस्तु के साथ इतना फ्रेंडशिप। यहां पर फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहिए और पार्टनरशिप भी नहीं करना चाहिए। समझो क्या क्या करना है। चिंतन नहीं करते जिंदगी में अपने आचार विचारों का, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, जरा चिंतन करना है। जरा सा चिंतन करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, अपनी क्रूरता से बाहर आएंगे, अपने मोह से बाहर आएंगे, अपने अहंकार से, अपने स्वामित्व बुद्धि से, अपने माया कषाय से हम बाहर आ सकते हैं। प्रमाद करेंगे जहां का तहां रहेंगे, प्रमाद छोड़ेंगे एक सेकंड नहीं लगेगा हम बाहर आके खड़े हो जाएंगे। जरा नुकसान होता है होने दो ना। धन के ऊपर भी इतना मोह नहीं करना चाहिए, जब बोली ले लेते हैं तो निर्मोही हो जाते हैं धन के प्रति। 10-10 हजार तक जाता है कि नहीं, तो जाने दो ना। एक साड़ी की क्या कीमत, 6,000 क्या 2,000, 6,000 दो साड़ी की क्या 12,000, 6 साड़ी की क्या कीमत, तो 1,00,000 समझ लो, 1,00,000 12 का क्या बड़ी बात है। 1,00,000 अपनी आत्मा को नरक में ढकेलने से अच्छा 1,00,000 का त्याग। अगर 1,00,000 का त्याग करने पर तुम स्वर्ग जा रहे हो तो नहीं करोगे क्या, धन से मोह करोगे? सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल, आम कच्चे हैं, आम देखो सभी आम कच्चे हैं, मैं दबा दबा करके उसका रस ऊपर निकालना चाहता हूँ। आम को जब तक दबाया नहीं जाता रस देता नहीं, वो अंदर जरा कठोर है, वो कठोरपना नरम होना चाहिए ना, तो बार बार दबाने से ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, रस बाहर आ जाता है। चिंतन करो, मुंह छोड़ो, तत्काल मुंह छोड़ो। एक ही तो वस्त्र, अन्य वस्त्र तो पहन ही रहे हैं, वस्त्र का मुंह भी छोड़ो कहते हैं, आरी का बनो कहते हैं, वस्त्र छोड़कर। और किस किस वस्त्र से मुंह रखते जा रहे हैं, कितना धन, कितना वस्त्र, किस किस से मोह करे। सच्ची क्षमा तो तभी होगी, उन जीवों को क्षमा करो, 6,000 जीवों को क्षमा कर दोगे, त्याग दोगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, जो आपके लिए श्राप दे चुके हैं ना, उनका श्राप दूर हो जाएगा। हम तड़प तड़प के मरे हैं, हम तड़प तड़प के मरे हैं, तुम पहनो, हम तड़प तड़प के मरे हैं, तुम पहनो, हम तड़प तड़प के मरे हैं, तुम पहन जाओ, सुख की अनुभूति करो। हम मरते हैं तुम सुखी बनो, हम मरते हैं तुम्हारे लिए, तुम सुखी बनो। कहते गए हैं कि नहीं, वो कहते कहते चले गए। अगर हम मरते समय कोई दूसरा सुखी हो रहा है और हम मर रहे हैं उनके वजह से, तो उनको उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसे रहेगा? हाँ, कैसे रहेगा? बुरा लगेगा नहीं? व्यक्ति, ये व्यक्ति मुझे मार रहा है और खुद सुखी हो रहा है। हमारे चमड़े को उतार कर अगर किसी ने वस्त्र बना लिया होता तो हमको कैसे लगता? सोचो, अच्छा लगता क्या? अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। वैसे हमें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। जीव मरे हैं, मरे हुए जीवों को हमें क्षमा करना चाहिए। 6000 जीव जो मरे हैं उनके प्रति क्षमा तभी हो सकती है जब हम उसका त्याग करते हैं, तभी क्षमा होगी। आज उत्तम क्षमा का प्रवचन सुना है, थोड़ा सा और नरमाई आई होगी, दया तो उत्पन्न हो गई होगी। महाराज, हम जरूर जा करके अब अपना काम करेंगे, आप चिंता मत करो। अब बार बार मत कहो, हम बिल्कुल निकाल करके ला रहे हैं। आप अब लाओ, लाएंगे 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 वन, हाँ एक लाएंगे, हाथ उठ गया। देखो, दया तो आती ही है। आत्मा जब भगवान बन सकता है तो उसके भीतर दया तो उगती ही है। लाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चिंतन मंथन हो रहा है, आंदोलित हो रहा है जीवन। कई लोगों ने लाके रख दिया है, 8-10 आए हैं, ज्यादा है? अच्छा, आपके कमरे में है शायद। वो गिन रहे हैं कितने लोग दे रहे हैं, ब्रह्मचारी जी गिन के देख रहे हैं कितने लोग छोड़ते हैं, कितने लोगों के दिल में एक क्षमा वाणी प्रकट होती है, देखना है। यही क्षमा उत्तम क्षमा है कि आपने बर्बर हिंसा को अपने जीवन में से त्याग दिया, जो भयंकर स्थूल हिंसा थी उसको छोड़ दिया, यही उत्तम क्षमा है। और कोई विचार बन गया? नो, उसको ला के दे दें, उसकी परीक्षा हम कराएंगे। आप लोग परीक्षा मत कराना, महाराज आप ही परीक्षा कराओ और ये क्या है ये बताओ। कुछ लोगों को ये शंका है कि वो रेशम का है कि नहीं, मुंह नहीं छोड़ता है ना, वो है क्या? नहीं, ये भाव आ ही जाता है, लोभ है वो। लोभ है, हम परीक्षा जरूर कराएंगे और उसमें जो ऐसा निकलेगा रेशम का उसका अनुपयोगी करेंगे, और जो निकलेगा नकली तो वापस कर देंगे उसको, उसको वापस करा देंगे। टाइम हो गया है, बराबर टाइम पर शुरू हो गया। भगवान कह रहे हैं अब इन लोगों को छोड़ो, इन लोगों को छोड़ो, जो क्षमा जिसको करना है कर लेंगे, इनको छोड़ दो, विचार कर करके ला करके दे देंगे। लाएंगे ना? हाँ, जिनवानी बोले प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी।